राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम मंदिर पंजाब भागिस्कान प्रातः काल के श्रीमद के भाग श्रीमद भागवत के प्रवचन में ये दो श्लोक भागवत के भागवत को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम। इस श्लोक उच्चारण करें तो ध्यान करना चाहिए भागवत कहां प्रकट हुई। ये श्लोक उस स्थान का दर्शन कराता है जहां भागवत नारद जी के द्वारा व्यास देव के ऊपर प्रकट हुई। नारायण नर नारायण ऋषि बद्री का आश्रम सरस्वती का तट और व्यास देव इन सब का नाम आता है और फिर नाम आता है भागवतम ततो जय ततो जयम उदीर्य। तो ततो जयम मतलब भागवत जो हमको सब एवरी मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट वो भागवत के लिए लास्ट लाइन भागवत शब्द है इनको प्रणाम करते हैं। तो जब उच्चारण करें तो साथ में उस चीज का दर्शन भी करके उसको मेडिटेट करना चाहिए कि ये भागवत कैसे उस स्थान के ऊपर इतने सारे ज्ञान होने के बाद भी व्यास देव के ऊपर नारद जी के द्वारा जब उसने समझा कुछ कमी है तब उसको सहारा मिला ना। जब हम समझेंगे सब कुछ हमको आता है तो फिर भगवान को बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे को कुछ बताने की, वो तो पहले पूर्ण है। तो हम समझेंगे हम खाली हैं तब कोई आएगा हमको भरेगा। तो व्यास समझा कि मेरे पास कुछ नहीं है कमी है तब भगवान ने नारद जी को भेजा। और दूसरा श्लोक नित्यम भागवत सेवया में भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ अपने को ध्यान करना चाहिए भागवत पुरुष का जिसके द्वारा हमको भक्ति मिली है। ये शब्द उच्चारण करते समय कम से कम अपने गुरुजन का और कुछ ऐसे भक्तों का जिसके द्वारा आपको भक्ति मिली है नैष्ट की भक्ति मिली है उसका भी ध्यान मन में आना चाहिए। हमारा अपने अनुभव से बताते हैं कि ये शब्द उच्चारण करते हुए तीन चार पांच ऐसे गुरुजन भक्त जिनके द्वारा हमारे जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने की निष्ठा हो रही है उनको प्रणाम करना चाहिए उसी का तो मंत्र है। तो ये भी ध्यान में वो नाम चार पांच पक्के लाने चाहिए। उसके लिए पहले से अपने आप को समझना चाहिए अपना गुरुदेव अपना जो शिक्षा गुरु या जिसके संग में हम रहे अथवा उनसे अभी हम प्रेरित हो रहे हैं उनके नाम ले उनका चित्र आना चाहिए मन में कि इन भागवत पुरुषों के कृपा से मैं भागवत को समझने का अधिकारी बन रहा हूं। तो ये भी मेडिटेशन है असल में। उच्चारण करने का मतलब ये नहीं कि मंत्र मशीन की तरह उच्चारण करना है, ये भी एक मेडिटेशन है। और फिर वो तीसरा श्लोक हम जो बोलते हैं वो भागवत में कुंती महारानी की प्रार्थना का उसका भी दर्शन ऐसा है कि रथ के ऊपर चढ़े हुए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका में कुंती महारानी ये प्रार्थना का शब्द जब कहती है तो भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर के नीचे आ जाते हैं अपने घर के जाने का विचार बदल देते हैं माँ कुंती के चरणों में प्रणाम करते हैं। भाव ये है कि भक्त जब करुणा से ऐसे भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा उसको बुलाते हैं तो भगवान बाकी सब काम अपने घर जाने वाले काम को भी छोड़कर भगवान के हृदय में आकर विराजमान आ जाते हैं। तो जब आप कथा करने जा रहे हैं तो भगवान की कथा करने जा रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हृदय में प्रेरणा दे कि उनके उनकी महिमा किस तरीके से मैं गा पाऊं। ऐसा भाव करके ये मंत्र इसका उच्चारण करना चाहिए। ये भाव भगवान के नाम कीर्तन केवल भगवान कैसे मिलता है नाम कीर्तन से मिलता है। ये दामोदर अष्टकम में एक आता है ना श्लोक कौन सा अनंत विष्णु क्या क्या श्लोक क्या श्लोक है नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुगा। तो ये सब नाम संकीर्तन है। अब कहते हैं केवल नाम संकीर्तन के अलावा भगवान मिलेगा नहीं। भगवान को मिलने का भगवान की करुणा का एक ही रास्ता है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और सनातन गोस्वामी ने उस श्लोक की टीका में लिखा है कि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान मिलता है। तो ये भी नाम संकीर्तन कर रही है कुंती महारानी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय ये संकीर्तन है। और इसमें भी नंद गोप कुमाराय नाम ऐसा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है कि ब्रज याद आती है तो दुनिया सब किसी और की बात न सुनकर वहीं उतर के आ जाती है। विशेष रूप के ये शब्द नंद गोप कुमारा सुनने के ऊपर भगवान को सब कुछ भूल गया उतर के नीचे आ गए। और पंच तत्व मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो पंच तत्व का दर्शन करना चाहिए। श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु बीच में खड़े हैं और उनके राइट साइड में नित्यानंद प्रभु हैं, उनकी राइट साइड में अद्वैत आचार्य। ये तीनों क्योंकि विष्णु तत्व है तो एक के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो है, गदाधर पंडित वो जो शक्ति तत्व है और श्रीवास वो भी शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व लेफ्ट साइड में होता है और हम भी भगवान की शक्ति हैं बारंग, इसलिए हमारा प्रणाम मंदिर में लेफ्ट साइड से होता है। उसके बाद आदि गौर भक्त जब शब्द आए तो षड गोस्वामी आदि का भी ध्यान आना चाहिए। पंचता श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदावन को देखना चाहिए कि ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये सब शास्त्र आदि गौर भक्त जो हैं षड गोस्वामी आदि जिन्होंने बैठ के ब्रज के अंदर कैसे वातावरण में ये सारे शास्त्र, न लाइट थी, न प्रिंटिंग प्रेस थी, न पत्ते पन्ने थे, न कलम थे जो अब एक रुपये की मिल जाती है, कैसे उनने स्याही बनाई होगी अपने हाथों से, कैसे कलम बनाए होंगे, कैसे बैठ के पत्रों के ऊपर ये सब शास्त्र लिखे होंगे। ये आदि गौर भक्तों की कृपा से आज हमारे को भगवान के भागवत शास्त्र मिले, तो आदि गौर भक्त में भी ये सारे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के परिकर है उनमें से छह गोस्वामी आदि जो जो नजदीक से नजदीक नजर आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि जिनका नाम उल्लेख हमारे को मिलता है, उनका भी एक चित्रण मन में आना चाहिए। असल में ये सब ध्यान है, इन सब चीजों को हृदय में उतारना है। हरे कृष्णा उच्चारण करते हुए भी उस किसी कीर्तन का दर्शन करो। प्रभुपाद जी हाथ ऊपर करके रथ यात्रा में कीर्तन कर रहे हैं, भक्त कभी ऐसे आनंद का कीर्तन कर रहे हैं, तो ये कीर्तन हमको ऐसे करना है, ऐसे भाव उसमें, ऐसा हमारा भाव। ये एक बहुत अद्भुत मेडिटेशन है जिसमें रोज की मेडिटेशन करते करते उस भाव को प्राप्त करने की ये नाम, ये भगवत नाम उच्चारण के अंदर सब भगवान की लीलाएं इसमें समाई हुई है। जैसे पेड़ के बीज में पूरा पेड़ समाया होता है लेकिन उसका पोषण करने की आवश्यकता है। तो ये श्रवण कीर्तन मनन जो आदि ये है, ध्यान जो भक्ति के हैं, ये सब उस बीज को अंकुरित करने के लिए है। नाम बीज है, इसमें भगवान, ये भागवत भगवान की लीलाएं सारी अंदर ही भरी हुई है, कहीं बाहर नहीं। लेकिन उसको जैसे हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान करेंगे, ध्यान भी तो एक नवदा भक्ति का अंग है ना, श्रवणम कीर्तनम सुमरणम, ये सुमरण करना है। सुमरण करने का मतलब जो चीज सामने नहीं है उसका ध्यान करना, उसको सुमरण बोलते हैं। सुमरण का मतलब यादगिरी में लाना, किसको लाना, जो सामने नहीं है उसको, सामने है उसको श्रवण कहते हैं, सामने जो बोल रहा है वो सुन रहा हूं। लेकिन जब कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, तब जो सुना हुआ है उसका ध्यान करना चाहिए, उसको सुमरण बोलते हैं। तो पांचवा स्कंद श्रीमद् भागवत का जिसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, पहले भी कहा था कि भागवत के दस विषयों में विशेष रूप से स्थान का वर्णन है इसमें, या वैकुंठ विजय का 26 अध्यायों का ये स्कंद है। 15 पहले अध्यायों में स्वयंभू मनु के बेटे प्रियव्रत के वंश का वर्णन है, प्रियव्रत, फिर अग्निधर और फिर नभाग, फिर ऋषभदेव और फिर उसके बेटे महाराज भरत। और इस चरित्र में भी ये दिखाया गया है विशेष रूप से कि पुनर्जन्म होता है, जैसे भरत के चरित्र में पुनर्जन्म को दिखाया गया, पुनर्जन्म होता है एक बात दिखाई गई। दूसरी बात ये दिखाई गई कि भगवान के अनुग्रह और कृपा और भक्ति की पुनर्जन्म होने के बाद भी भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती है, ये दूसरा सिद्धांत इसमें स्थापित किया गया है कि भगवान की हुई भक्ति जड़ भरत को अपने हिरण के शरीर में भी भूली नहीं, इसका मतलब की हुई भक्ति किसी भी सरजूनी में चले जाए तब भी भूलती नहीं, ये सिद्धांत इसमें स्थापित होते हैं। ये सब भगवान, ये भगवान की करुणा से होता है, भगवान की दया से ये सब संभव है, भगवान की भक्ति से संभव है। फिर पांच अध्यायों में इस पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं इसका वर्णन है, 15 के बाद 5 में पृथ्वी का वर्णन है और 4 में अंतर तारामंडल का वर्णन है, ग्रह नक्षत्रों का वर्णन है। तो 5 में विशेष रूप से पृथ्वी के अलग अलग वर्षों का वर्णन है और 4 अध्यायों में वर्णन है खगोल का विशेष रूप से, और फिर 2 अध्यायों में नरक लोगों का वर्णन है, वो सबसे अलग करके रखे हैं। भूगोल और खगोल से नरक को थोड़ा सा अलग दो अध्यायों में रखा गया है। जैसे भगवान जब भगवद गीता में कहते हैं सतोगुण रजोगुण फिर एंड करके तमोगुण कहते हैं, इसका मतलब तमोगुण से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो नरक से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए उन दो को अलग करके रखा है दो अध्यायों का। ऐसे विश्लेषण इसका पूरे स्कंद का इस तरीके से 26 अध्यायों में। तो भगवान की स्थिति इन सब चीजों में कैसे है तो इसका वर्णन है। और अभी जो हम आज इसका अध्ययन कर रहे हैं ये अध्ययन भूगोल खगोल का है। असल में भूगोल का थोड़ा सा है खगोल, खग कहते हैं, ख आकाश को कहते हैं। तो ये तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में जाके भी तो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ते हैं लोग जो ऊपर जाते हैं स्पेस में। तो ये उसी का वर्णन है। अभी जो भागवत में तो कोई चीज ऐसी है नहीं जिसका वर्णन नहीं हो। तो ये जो 24वां अध्याय है इसको बिल्व सर्ग, बिल्व सर्ग, वैसे बिल को ऐसे मानना चाहिए जो सांप का बिल होता है, चूहे का बिल होता है ना, उसको बिल ही बोलते हैं ना भाई, बिल में रहता है ना चूहा, चूहा कहां रहता है? तो धरती के नीचे कुछ बिल है, जैसे धरती के अंदर बिल होते हैं उसके अंदर तो भाई सांप आदि रहते हैं, अजगर आदि जाके अंदर रहते हैं ना, देखा है ना, पाइथन आदि बहुत लंबे लंबे बिल बना के उसमें रहते हैं ना। तो धरती के नीचे बहुत बड़े और बिल हैं, और वो बिल स्वर्ग के हैं, इसलिए उसको बिल्व सर्ग। तो जैसे लिखा है छेद हैं बड़े बड़े नीचे, धरती के छेद हैं, उन छेदों के नीचे 7 लोक हैं। तो वो जैसे बिल्व उत्सर्ग इसलिए कहते हैं कि वहां के सुख स्वर्ग से भी ज्यादा है। तो आज हम अभी अध्ययन जो करेंगे आज ये श्लोक 4 है इस अध्याय का। और इस श्लोक में अभी धरती के ऊपर से ऊपर के भाग में क्या है उसका वर्णन है। ऊपर के भाग में सूर्य और चंद्र का वर्णन हुआ है, सूर्य लोक चंद्र लोक का वर्णन हुआ है, और फिर वर्णन हुआ है उन दोनों के नीचे राहु का। अभी कोई कहे, एक बार प्रभुपाद जी से पूछा भक्तों ने किसी रिपोर्टर ने, या कि भगवत गीता 5000 साल पुरानी कही हुई है, उसकी अभी क्या आवश्यकता है, या आधुनिक युग में उसकी क्या उपयोगिता है। तो प्रभुपाद ने एक श्लोक की उद्धृत करते बोला, भगवत गीता में लिखा है अनाद भवती भूतानि, सारे प्राणी अन्न खा के जीते हैं, क्या अभी कुछ चेंज आई है क्या उसमें? आदमी अभी भी तो अन्न ही खा रहे हैं ना, और अन्न बरसात से पैदा होता है ना, इसमें कोई परिवर्तन आया क्या आजकल? नहीं आया ना। तो आज जरूरी, आज उतनी इम्पोर्टेंट है भगवत गीता कि नहीं? एकदम उत्तर ऐसा दिया कि ये श्लोक यही उद्धृत किया कि अनाद भवती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। तो अन्न से सब जीव अन्न के ऊपर जीते हैं, आज भी जीते हैं, 5000 साल पहले भी जीते थे, उससे पहले भी जीते थे, तो इसमें कौन सा आज के जमाने में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? और फिर वो बरसात से अन्न होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पानी तो बरसात बरसेगी तभी होगा ना, और बरसात बरसाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान कहते मैं ही बरसाता हूं, और यज्ञ करोगे तब बरसाऊंगा। अब तुम्हारा है बरसात नहीं हो रही है या ज्यादा हो रही है क्योंकि तुम यज्ञ नहीं कर रहे हो। भगवत गीता की उपयोगिता आज भी है। और इसी एक और श्लोक है मेरे ख्याल में, छोटे से छोटे से 2 लाइन का श्लोक है, उसके भावार्थ में विशेष रूप से ये लिखा हुआ है कि लोग कभी आपसे पूछते हैं कि आप कौन सा सोशल वर्क करते हैं लोगों के भले के लिए, उसमें लिखा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं संकीर्तन, जिससे वर्षा हो रही है, जिससे अन्न पैदा हो रहा है, जो आप खा रहे हो तब आप जी रहे हो, ये नहीं करोगे तो वर्षा होना बंद हो जाएगा, ज्यादा इतनी होगी कि बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। उस श्लोक में छोटे से 2 लाइनों में ये उत्तर लिखा है कि हम क्या सोशल वर्क कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा सोशल वर्क ये कर रहे हैं, तुम जो खा रहे हो वो संकीर्तन यज्ञ से होता है, और हम सुबह शाम यज्ञ ही कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कौन सा सोशल वर्क आपको चाहिए कि जो आपको खाने के लिए चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए। ये मेरे ख्याल में 5वें अध्याय या किसी में 2 लाइन का छोटा सा श्लोक है, मैं उसके भावार्थ में ये लिखा हुआ है। तो आज भी इसकी इतनी आवश्यकता है जितनी पहले थी। तो ऐसे ये भूगोल खगोल भी आज भी कोई कहेगा कि सूर्य है नहीं, सूर्य है कि नहीं है, चंद्रमा है कि नहीं है, राहु, अभी सारी दुनिया जानती है कि ग्रहण लगता है, राहु लगता है, सभी कहते हैं राहु प्लानेट है, अब राहु को ये स्थान किसने दे दिया कि देवों के बीच में इसका नाम आ रहा है। ये भी मोहिनी मूर्ति के समय में राहु हमने अमृत पी लिया तो भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ, सर उनका असर उसका अमर हो गया। ये भगवान ने अमृत का प्रभाव दिखाया और राहु सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा था और दोनों ने उंगली उठाई थी, देवता होते हुए भी उंगली उठाई थी, तो आज तक उनके ऊपर ग्रह लगता है, ये वर्णन आया ना, तो आज भी ग्रह लगता है कि नहीं है? ये कोई ये थोड़ी कहेगा कि है तो पुरानी भागवत पता नहीं कितनी है, इसमें क्या लिखा है, हमारे काम का आपके काम का क्यों नहीं है? आज भी आप अखबार में देते हैं कि ग्रह आने वाली है, तुम्हारे साइंटिस्ट बड़े बड़े राजसारी ऊपर खड़े होकर बड़ी दूर बने से ग्रह को देखना चाहते हैं। अरे इतनी परेशानी क्यों? हम सीधा समझ रहे हैं कि ग्रह होता है और फिर दिखता नहीं है। एक बार दीनबंधु जी यहां से चले गए ग्रह देखने के लिए आसाम के पास, बोला वहां से देखेगा। जब वहां पहुंचे तो इतनी बादल बरसात थी ग्रह दिखाई नहीं, इतना दूर जाके प्रयास किया, जहाज पे गए और दिखाई नहीं गया तो बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी दूर बने लगा दिखता नहीं है, लेकिन हमें हमारे ज्योतिषी तो पहले कहते हैं इस साल में इस दिन इस वक्त इससे इस टाइम तक ग्रह लगेगा, ग्रहण लगेगा, उनको ये भी पता लगता है बगैर दूरबीनी बगैर खुरबीनी के, और ये सारा इतना प्रयास करने के बाद बोलते हमको दिखा नहीं, हमने बड़ा प्रयास किया, इतना सारा खर्च करते हैं फिर भी देखने का प्रयास करता है दिखता नहीं है। और हमारे पंडित जी को शास्त्र के अंदर पढ़ने के बगैर ऐसे करके ऐसे ही बता देगा इस दिन इतने बजे इतने से इतनी घड़ी तक ग्रहण रहेगा। तो ये विज्ञान अपने आप में बहुत जो है सिद्धांतिक है, आज भी कोई नहीं कह सकता है कि भाई सूर्य नहीं है कि चंद्रवाणी, आज भी उतना ही उपयोगी है। जब सूर्य और चंद्र की बात आपको समझ में आ रही है और ग्रहण आज भी लग रहा है, राहु आज भी है, तो बाकी चीजें में जो है उसको वैसे ही मानना चाहिए, चाहे हमारे को अभी वो अनुभव में नहीं आती। ये ऐसे ऐसी तो सारी आपका ज्योमेट्री कैसे चलती है, ये एंगल इसके बराबर है इसलिए ये एंगल इतनी होगी, ऐसी करते उसको तो सपोज ही लेते हैं ना, ये सपोज इसके बराबर है इसलिए सपोज ये इसके बराबर है, तो सपोज क्या चांद और सूरज दिखता है राहु का ग्रहण लगता है तो बाकी सब लिखा है वो भी सत्य होगा ना, ये ऐसे ही प्रमाण चलता है ना। तो आज ये श्लोक चौथे को पहले हम पढ़ते हैं, ततो अधस्तात् सिद्धचारणाम् विद्याधराणाम् सदनानि आवन मात्र एव। ततो जो शब्द है इसका मतलब इससे पहले जिस राहु का वर्णन किया है, ततो का मतलब राहु ग्रह, अधस्तात उसके नीचे, अध कहते हैं नीचे को, अधस्त तस्य शाखा, अध का मतलब नीचे, उसके नीचे क्या है, सिद्ध चारण, सिद्ध और चारणों का लोक, सिद्ध पुरुष है एक चारण है, वैसे धरती के ऊपर भी चारण होते हैं, जब राजा महाराजा का गुण गाने के लिए चारण आते हैं उनको दान दिया जाए, चारण मागध सूत इन सब का वर्णन हमारे को शास्त्र में मिलता है। सूत कौन है, जो पुराणों की कथा बताए, चारण जो राजाओं के कुल पीढ़ियों के गुण गाए, चारणों का काम आज भी राजस्थान में चारण एक जाति है और जिसका काम हुआ करता था राजा महाराजों के गुण गाना के आपकी पीढ़ी में ऐसे ऐसे वीर हुए ऐसे ऐसे शूरवीर हुए, तो चारण। और मागध उसके लिए भी एक विशेष शब्द है कि वो बंदी गण वंदना करने वाले, मागध बंदी सूत इन सब का वर्णन आता है, नंद बाबा ने इन सबको दान दिया है जब से भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ है, तो ये लोग कहां रहते हैं, यहां लिखा है चारण और सिद्ध, सिद्ध पुरुष उसके लिए दो लाइन प्रभुपाद ने लिखा है, सिद्ध वो होते हैं जिनके पास योग सिद्धियां होती हैं, वो अपने आप जहां जाना चाहे जब जाना चाहे वहां जा सकते हैं, इस सिद्ध शब्द से सिद्धियां निकलती हैं और लोग सिद्ध बनना चाहते हैं सिद्धियां प्राप्त करके, और ऐसे लोगों का वर्णन प्रभुपाद जी जब एक बार कुंभ मेले में गए थे तब कहा कि आप जान नहीं सकते यहां कौन कैसे आते हैं, बहुत से ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जो गंगा की धारा में बहकर और ऊपर से नीचे यहां आ जाते हैं। अब ये तो हमको मालूम नहीं, ऐसे लोग हैं जो अभी भी, बहुत पुराने जमाने में एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि लोग उड़ते कैसे हैं आकाश में जैसे सिद्ध उड़ते हैं, तो वो आर्य समाज का महात्मा था, उसने कहा मैं हर साल जाता था ऊपर कैलाश बद्रीनाथ केदारनाथ, तो एक गुफा के अंदर एक साधु को देखा, मैंने कहा आप लोग ऐसी सिद्धियां कैसे है, कैसे ऊपर जाते हैं। उसने बोला मेरे सामने उसने बैठे बैठे करके सांस भरा और थोड़ी तरह गुब्बारे की तरह बढ़ गया, गुब्बारे की तरह बढ़ गया और मेरे सामने वो ऐसे उठ रहे जमीन से उठ के जाके गुफा की छत के ऊपर तक पहुंच गया। मेरे सामने मैंने आंखों से देखा उसको कि उसने अपने अंदर में हवा भरी जैसे गुब्बारे में भरते हैं और फिर वो जैसे हल्का हो गया और मेरे सामने वो उठ के ऊपर चला गया, मैं आंखों से देखा। और एक सन्यासी महात्मा ये बात आंखों की देखी हुई कर रहा है, उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, और ये तो 50 साल पुरानी बात है, कोई उससे पुरानी भी नहीं। और फिर मेरे सामने उसने कहा कि इस तरीके से हम जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और फिर उसने अपनी सिद्धियों जैसे जो उसके पास सिद्धियां थी वो सब हवा को फिर निकाल दिया और फिर आके नीचे मेरे सामने बैठ गया। मैं बाहर निकला, सामने से शेर आया, मैं हटा, बोला तुम डरो मत, ये रोज इधर आता है। और शेर को कहा हट, तो जैसे कुत्ते को हम कहते हैं हटे तो शेर चला गया। ये तो बोला मैंने आंखों से उसको देखा है कि इन लोगों में ये तो ये सिद्ध ऐसे लोग अभी भी यहां जीते हैं। ये तो राधानाथ महाराज ने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि सांपों और बिच्छुओं के बीच में गिरा तो मेरे जो मेरा साधु था उसने मैं कहा किसी से द्वेष भाव मत रखना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो मैं गुफा में ही था और सब कुछ वहां था, लेकिन इसी एक ध्यान के ऊपर किया कि कोई किसी का शत्रु नहीं है तो कैसे भी मुझे किसी ने काटा नहीं। तो ये तो अभी आजकल के युग में भी इतना तो हम देखते हैं। ये तो सिद्ध लोग में रहते हैं। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया जाना था और सिंगापुर में रुके हुए थे, संडे का दिन था, पता लगा वीजा तो लगा ही नहीं, जाएंगे कैसे, टिकट लिया हुआ है, संडे का दिन है, वीजा कैसे लगेगी, संडे को तो ऑफिसें बंद है। एक वो लोकल आदमी भागते हुए वो एम्बेसडर के घर गया, एम्बेसडर के घर से उसको निकाला, चाबी निकाली, ऑफिस में गए, स्टैंप लगा और उसी जहाज में उसी वक्त थप्पा लगा के चले गए। तो ये न होने वाली बातें अभी आज इधर दुनिया में भी तो आउट ऑफ वे हो रही है कि नहीं है। तो इनके पास तो इतनी बड़ी अपनी योग सिद्धियां हैं, तो ये सिद्ध लोग रहते हैं। ये सिद्ध लोग किसी से मांगते नहीं है, इनकी अपनी सिद्धियां हैं, उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। चारण लोग जो है वो तो मांगते हैं, जाके गा के कुछ मांगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय सिद्ध और चारण साथ गा रहे थे, ये भगवान दोनों गंधर्व और किन्नर, किन्नर काले कलूटे हैं और गंधर्व बहुत सुंदर है, लेकिन वो भी साथ, जैसे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में शेर और बाघ और हिरण साथ में नाचते हैं, ये भगवान की विशेषता है कि एक दूसरे के विपरीत भी साथ प्रेम से रह सकते हैं। तो ये यहां सिद्ध चारण, सिद्ध लोक और चारण लोक, फिर विद्याधरण और विद्याधर है। इन विद्याधरों की स्त्रियों का वर्णन तीसरे स्कंद में आता है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति के लिए कई हजार विद्याधर कन्याओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने उसको स्नान कराया। और ये विद्याधर कन्याएं महाराज चित्रकेतु के विमान में भी बैठी थी जब विद्याधर चित्रकेतु बना था। ये विद्याधर चित्रकेतु विद्याधर था, ये दूसरा भगवान अंगिरा मुनि ने उसको संकर्षण की उपासना का मंत्र दिया था, भगवान संकर्षण नीलांबर की उपासना का मंत्र दिया, वो विद्याधर बना चित्रकेतु के बाद। तो इस विद्याधर लोक में जाकर रहा, इस विद्याधर लोक में रहा, इसके साथ विद्याधरा थी। तो ये वर्णन भागवत में कई जगह विद्याधर का आ रहा है। और फिर लिखा है विद्याधर सदनानी, ये सदनानी सदन तो आपको शब्द आता है ना, बंगले सदन कहते हैं ना, है कि ये राज सदन है, राजभवन है, सदन है ना, तो इन सबके वहां बंगले बने हुए हैं, जहां ये रहते हैं उनके वहां सदन है, सिद्ध चारण है और गंधर्व ये आदि जो भी दूसरे लोग हैं इनके वहां जगह है, इनकी पत्नियां हैं, ये साथ सब रहते हैं, इनके रहने का स्थान है वहां। तावत मात्र शब्द है ना, तावत मात्र शब्द पड़ा है ना श्लोक में, तावत मतलब उसके समान, तावत यावत, मात्र मतलब उतना ही दूरी पे, जितनी पहले दूरी बताई है उतनी ही दूरी पे, उतनी दूरी का मतलब 8000 माइल जैसे पहले है। एवं मतलब निश्चित रूप से इसका अनुवाद है राहु के नीचे 10000 योजन, इसका मतलब 8000 माइल। और लोक हैं, सिद्ध लोक है, चारण लोक है और विद्याधर लोक है, ये राहु के नीचे ये सब लोक हैं। और यहां ये लोग अपने अपने महलों में सुख से रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो गाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है, सिद्ध लोक के रहने वाले प्राकृत रूप से योग सिद्धियों से संपन्न है। उस लोक में जाते ही वो है जो योग सिद्धियों को ग्रहण कर लेते हैं। इससे ऐसे भी समझना चाहिए, जो योग सिद्धियों के पीछे लगे हुए हैं वो भगवान के पास तो नहीं जाते हैं, सिद्ध लोक में जाते हैं। वो सिद्ध लोक में ही जाते हैं, उनका भगवान तक जाना है। योगिक सिद्धियों जिन्होंने प्राप्त की वो कहां जाएगा मरने के बाद? सिद्ध लोक में जाएगा। पुण्य कृताम लोकान, स्वर्ग लोक में जाएगा, जहां पुण्य करने वाले लोग जाते हैं। ऐसा भी वर्ण आता है ना कि ये लोग पुण्य लोक में जाएगा तो स्वर्ग लोक में जाएगा। ये सिद्ध लोक में जाएंगे जो योग सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और योग की सिद्धियां बहुत लोग प्रयास करते हैं प्राप्त करने की, ये भी एक एक लोगों को टेस्ट उसकी आ जाती है। लेकिन यहां सभी सिद्ध लोग रहते हैं और वो एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं अपने योग बल से। प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनको किसी भी वायुयान की जरूरत नहीं है, नो एयर प्लेन इज नीडेड, या ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं। वो अपनी सिद्धि से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कौन सी अष्ट सिद्धियां है ना, अनिमा लघिमा आदि, उन सब सिद्धियों से अपने आप में ये संपन्न होते हैं। हनुमान इन सिद्धियों का उपयोग करते थे ना, छोटे से छोटे बन गए, बड़े से बड़े बन गए। तो ये सिद्धियां भक्तों के पास, ये सिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। उन सिद्धियों को भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। इसका उदाहरण कौन है? ऋषभदेव महाराज। उसके सामने सिद्धियां आके खड़ी हो गई कि मुझे स्वीकार करो। उसने बोला नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? भगवान हो आपको क्या? बोला मैं लोगों को उदाहरण दे के बताना चाहता हूं, भक्तों के लिए सिद्धियां बंधन का कारण बन जाएंगी। आपके पास सिद्धियां आएंगी तो सिद्धियों से लोग पूजा करने लगेंगे और भगवान को भूल जाएंगे, भक्ति में बाधा पड़ेगी। सिद्धि भक्त के लिए, भक्त उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। हरे कृष्णा। इसके आगे वाले श्लोक में लिखा है, ततो अधस्ताद यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूत गणानाम विहार जार्यम अंतरक्षम यावद वायु प्रवाति यावन मेघा उपलभ्यन्ते। इसके भी शब्द आपको आते हैं सारे। देखो ततो, ततो मतलब सिद्ध चरण लोक से नीचे, ततो अधिष्ठान उससे नीचे कौन रहता है? सिद्ध चरण से नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये नाम आते हैं सबको नहीं, पिशाच, राक्षस, यक्ष, प्रेत, भूत, ये सब रहते हैं। विहार अजीरम, उनके विहार की जगह है। विहार किसको? विहार किसको हम बोलते हैं? घूमने की। तो उनके इंद्रिय तृप्ति के घूमने की ये जगह है। कौन सी जगह है उसको? उस जगह को क्या बोलते हैं? अंतरिक्षम, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष कहां तक है? बोला जहां तक हवा पहुंचती है, बादलों का जहां तक देखे जाते हैं। उपलभ्यन्ते विद्या, हाँ, विद्याधर लोक, चारण लोक और सिद्ध लोक से नीचे जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। वहां यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतों के भोग का स्थान है, वहां वो विहार करते हैं। अंतरिक्ष वहां तक नीचे आता है जहां तक हवा और बादल आकाश में घूमते हैं, और इस स्थान से ऊपर फिर हवा नहीं है। मतलब अंतरिक्ष वहां तक आता है जब तक बादल आदि हवा है, हवा से ऊपर का स्थान सिद्ध लोक और इसके बीच में। इसका मतलब बगैर हवा के भी लोग जीते हैं, कोई उनका और को जीने का साधन होगा, तो हवा है नहीं। ये भूत पिशाच वहां रहते हैं, इनके रहने का स्थान वही आकाश में रहते हैं, वहां से ही आते हैं। और इसके नीचे ततो, उसके नीचे अधस्तात, उसके नीचे चलत योजनांतर यम पृथ्वी यावद धंस
भाषसेना उपर्णादय पततरी पव परवरा उत पतंती थी।
यक्ष राक्षस चारणों के नीचे 100 योजन 800 माइल 800 माइल उससे नीचे धरती है। इसका मतलब धरती से 800 माइल ऊपर 800 माइल ऊपर यक्ष राक्ष पिशाच वहां रहते हैं। अच्छा है नीचे नहीं रहते, नहीं तो हम तो बहुत दुखी हो जाते हैं। ये थोड़े बहुत यहां भूत है, उन्होंने हमको परेशान कर दिया है। अच्छा है 800 जहाज कितना ऊपर उड़ता है, कितने 11 किलोमीटर की दूरी पे। ये 800 मील है, इसलिए ये जहाज वाले तो नहीं कह सकते हैं कि हमने भूतों को देखा है। वही भूत उससे ऊपर जाए तो ये भी भूत हो जाएंगे, उधर जाते ही नहीं है बेचारे। 800 मील नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी से 800 ये ऊपर है। और फिर क्या लिखा है, अपर लिमिट क्या है इसकी, पृथ्वी और 800 मील ऊपर की लिमिट क्या है, जहां तक स्वान हाक ईगल और ऐसे पक्षी उड़ते हैं। कुछ पक्षी आकाश में ऊपर तक उड़ जाते हैं, उन पक्षियों में ये हवाई जहाज भी जहां तक उड़ते हैं, इससे ऊपर अंतरिक्ष से ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो ये उन पक्षियों का नाम लिखा है जो दो पर वाले हैं, उड़ते हैं। पत अत्री दो जिसके पर हैं जो उड़ते हैं। इसके बाद वाला श्लोक कहता है, हे महाराज परीक्षित, धरती के नीचे शब्द क्या लिखे हैं, उपवर्णितम भूमिर यथा सनिवेशा अवस्थानाम अवनेरपि अधस्तात् सप्त भू विवरा एकैकशो विवरा। विवरा का अर्थ लिखा, भू विवरा धरती के नीचे एक एकशः एक एक के नीचे योजन अयुत अंतरेण 10,000 योजनों की दूरी के ऊपर आयाम विस्तारेण जितनी इस धरती की चौड़ाई है उतना उपलक्षिता है अतलम अतल लोग वितल लोग सूतल लोग तलातल लोग और महातल लोग रसातल लोग और पाताल लोग और 7 लोग धरती से नीचे है उसका वर्णन है। धरती का वर्णन किया, इससे 800 ऊपर पिशाच भूत और उससे ऊपर जहां लिमिट खत्म होती है उसको अंतरिक्ष की लिमिट जहां खत्म होती है वहां से ऊपर सिद्ध चारण विद्याधर उससे ऊपर राहु उससे ऊपर सूर्य उससे ऊपर चंद्रमा। ये ऐसे हो गया, अभी चंद्रमा सूर्य राहु चारण विद्याधर उसके नीचे यक्ष राक्ष पिशाच भूत और उससे नीचे आ गई पृथ्वी हमारी 800 मील और पृथ्वी के नीचे 7 लोगों का वर्णन है। और ये जो 7 लोक है इन 7 लोकों में जिनको क्या कहते हैं, बिल्व सर्ग कहते हैं। ये नीचे वाले 7 लोग जो धरती से हैं इनको बिल्व सर्ग कहते हैं। वहां क्या है, बहुत सुंदर घर हैं, बड़े सुंदर बगीचे हैं, इंद्रिय भोग के बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वो तो सर्ग से भी ज्यादा है। और फिर क्या लिखा है, क्योंकि जो डीमंस हैं जो असुर हैं उनका जीवन स्तर बहुत ऊपर का है। लाइन पढ़ लो, बिकॉज द डीमंस हैव ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेंसुअल प्लेयर। इसका मतलब हाई स्टैंडर्ड सेंसुअल प्लेयर मतलब डीमन, ये लैंग्वेज ये कह रही है। जितने भोग की ज्यादा सुविधाएं बनाने का प्रयास करेंगे उतना असुरी भाव में ज्यादा प्रवर्तित आदमी होता है, उसमें असुरी भावना आ जाती है। तो वहां क्योंकि ये असुरी लोग प्रकार के लोग रहते हैं इसलिए उनका जो सुख का भोग का, तो यहां से अमेरिका में क्या कहते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यू आर मोर डिमांडिंग, बस यही हुआ और क्या हुआ। इसलिए कभी कभी कहते हैं अमेरिका को पाताल लोके, उसको पाताल लोक नीचे है, पर बहुत नीचे है, उल्टे तरफ से है, तो ज्यादा भोग है। तो इसका मतलब भाई हिरण्याकश को असुर क्यों बोलते हैं? हिरण्याकश जितना आज किसी ने भोग किया है इस धरती के ऊपर, उस जितना सुख सुविधा पुराणों में किसी और के पास नहीं है, उसको सबसे बड़ा असुर माना जाता है, जिसके पास सबसे बड़ा भोग है। तो क्योंकि वो असुर लोग हैं, उनके लिए उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड, इंद्रिय प्रतिनिधि स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, और धन भी उनके पास ज्यादा है। दूसरा लिखा है सेंस प्लेयर वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, उनके पास धन भी ज्यादा है। चार चीजों का नशा सबसे बड़ा नशा माना गया है। ये नशे नहीं जो लोग करते हैं, ये नहीं, ऊंच कुल में जन्म का नशा, बहुत बड़ी विद्या का नशा, सुंदर रूप का नशा और बड़े धन का नशा, इन चारों में भी नारद कहता है धन का मद का अंध सबसे बड़ा अंध है। ये नल कुबेर की मुक्ति वाले अध्याय में नारद गीत है, नारद की गीता है, 8-10 श्लोकों में या 12 श्लोक है नारद गीत का, उसमें ये नारद विशेष रूप से कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया में नशा है दौलत का। इसको दौलत इसलिए कहा है, कहते हैं उर्दू में, आते हुए एक लात मारती है आदमी को, पीठ पे ऐसे कर देती है, मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं, जाते हुए कांध के ऊपर इधर गर्दन में लात मारती है, ऐसा करती है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बनता है, इसलिए इसको दौलत बोलते है, दौलते मारती है, आते हुए कमर को ऐसे करती है, ऐसे किसी के सामने झुकने वाले नहीं, जाते हुए गर्दन को ऐसा टेढ़ा करती है, मुंह दिखाने के लायक नहीं होती है, इसको दौलत बोलते है। इसका नशा सबसे बड़ा है। कुबेर जैसे देवता के बेटे शंकर के अनुचर दौलत के नशे के अंदर नंगे नाच रहे थे, और नारद ने उसको कहा कि इनको धन का अंध हो गया, मद हो गया है, और धन के मद का इलाज क्या है? नारद बहुत अच्छे चिकित्सक, बड़े बड़े वैद्य हैं, कहते धन मद अंध, उसका इलाज क्या है? दरिद्र अंजनम, उसको दरिद्र बना देना उसका इलाज है। गरीब बना दोगे तभी उसको, गरीब को क्या दुख होता है उसका अनुभव होगा, जिसको कांटा लगता है उसको कांटे के दर्द का पता होता है। और फिर कहते हैं दरिद्र बनने का फायदा क्या है? पहले दरिद्र बनने का फायदा यह कि इंद्रियों को भोग कर ही नहीं सके, कुछ है ही नहीं, भोग क्या करेगा है? कुछ है ही नहीं तो भोग नहीं करेगा ना, भोग नहीं करेगा तो इंद्रियां अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी, खाने पीने के लिए नहीं होगा तो इंद्रियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी, बस एक ही लालसा बचती है कि मेरे पास धन आए, इतना ही होगा ना गरीब के पास। धनवान के पास भोग करने का धन और धन कमाने का धन और अधिक सारे चार पांच और परेशानियां बढ़ती हैं, लेकिन धन कम होने के पास एक बहुत बड़ा लाभ है कि उसके घर में साधु संत अपने आप आते हैं। नारद कहता है दरिद्रों के ऊपर साधु अनुग्रह करके आते हैं, और उनके सत्संग सुनने से उनकी वो धन के भोग की लालसा भी खत्म हो जाती, इसलिए मैं अनुग्रह करके कृपा करके इन दोनों धन मद अंधों को पेड़ बना देता हूं, लेकिन कृपा ये करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण इनको भक्ति अपनी देंगे। ये नारद गीत, इसको नारद गीत कहते हैं, ये 12 श्लोकों में जम कुबेर और नलगिरी वाला और नारद के, ये बहुत सुंदर प्रचार के लिए ऐसे श्लोक है, हथौड़े का काम करते हैं किसी के सर के ऊपर मारने के लिए। तो यहां इनके उनको धन का और फिर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस वक्त दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? अमेरिका का। तो इसे ठीक तरह डिमोनिक प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इसलिए प्रभुपाद कभी कहा करते इनको पता लगे कि हम इनको क्या कहना चाहेंगे तो अभी हमको ये सूली पे चढ़ा देंगे, पहले एक हजरत ईसा को चढ़ा दा, हम अभी हमको सबको चढ़ा देंगे, इनको मालूम नहीं हम क्या कहना चाहें। लिखा है कि सब जीवन है, लेकिन साचीदा नहीं लिखा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन लिखा वही है। इनको अगर पता लग जाएगा कि हम क्या कहना चाहेंगे तो ये हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। एक इंटरव्यू लेने प्रभुपाद से आई, उसको क्रास डाला हुआ था, प्रभुपाद ने सीधा कहा ये क्रास क्यों डाला है? यार ये दिखाना चाहते हो दुनिया को कि जिसने हमको भगवान से प्रेम सिखाया उसको हमने सूली पे चढ़ाया, यही दिखाना चाहते हो ना कि तुमने यही काम किया ना, जिसने आपको भगवान का प्रेम और भक्ति सिखाया उसको आपने सूली पे चढ़ाया ना, वो तो बिचारी ऐसे थर थर कांपे। मैंने मेरे को बोले तुमको नहीं कह रहा हूं, मैं क्रिश्चियनिटी को कह रहा हूं कि ये लटका के दिखाना क्या चाहते हो कि सूली पे चढ़ाया, जिसने हमको भगवान का प्रेम सिखाया उसको सूली पे चढ़ाया, यही तुम कहना चाहते हो ना। और यहां जो लोग रहते हैं इन सात लोकों में उनको कहते हैं दैत्य, दिति के बेटे दैत्य, दानम दानु के बेटे दान, दानु ये दानु कश्यप की पत्नियों के नाम है, दिति दानु, और फिर है नाग कद्रु के बेटे नाग, ये कद्रु ये भी कश्यप की पत्नी है, नाग कैसे रहते हैं देखो, ऊपर के लोक सत्य लोक में लिखा होगा वहां सिर्फ सन्यासी साधु रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, वृक रहते हैं, और यहां लिखा है ये सब लिव एज हाउस होल्डर्स, ये सब परिवार के साथ रहते हैं नीचे। कौन कौन? दैत्य, दानव और नाग अपने यहां भी तो नागालैंड है ना, एक भारत में भी तो नागालैंड है, तो नाग की लैंड यहीं पड़ी है, ऐसे नहीं कि नाग नहीं रहते हैं, इसका मतलब नाग का मतलब केवल सर्प नहीं समझना चाहिए। फिर उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके मित्र, ये सारे पूर्ण रूप से भौतिक सुख में बहुत प्रांगत हैं। लाइन पढ़ूं कैसे लिखे? देयर वाइव्स चिल्ड्रेन फ्रेंड्स एंड सोसाइटी आर फुली एंगेज इन इल्यूजरी मटीरियल हैप्पीनेस, उनके पास सुख बहुत हमसे ज्यादा है। अरे सांप के इसके ऊपर वो बहुत सुंदर मणियां लगी हुई हैं, उसको ढूंढ के लोग लाखों रुपए कमाने का प्रयास करते हैं, और ज्वेल है बहुत सुंदर, यहां आगे लिखा है इसमें कि वहां सूर्य की रोशनी तो पहुंचती नहीं है, तो वहां प्रकाश कहां से आता है? वो तो डीजल पेट्रोल भी नहीं है, कहीं से ऑयल भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाने के लिए कोई स्टेशन, ग्रिड स्टेशन भी नहीं बनी है। अरे उनके अपने सर के ऊपर लगे हुए जो सुंदर सुंदर आभूषण और ज्वेल और मणि है, उससे इतना प्रकाश होता है कि अंधकार वहां है ही नहीं, वो सेल्फ इफर्जेंट है, उनके पास ऐसा वातावरण है। तो आगे लिखा है कभी कभी देवताओं के तो सुख भोग में बाधा पड़ सकती है, लेकिन इनके सुख भोग में कोई बाधा डाल नहीं सकता है। देवताओं के सुख भोग में कोई बाधा डाल सकता है, लेकिन जो लोग इन बिल्व स्वर्ग में रहते हैं उनको कोई कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उनको तो बहुत बड़ा सुख है। किसका डर है? सिर्फ इधर नहीं लिखा है, आगे श्लोकों में आएगा, उनको केवल सुदर्शन चक्र का डर है। कभी कभी भगवान का सुदर्शन चक्र आता है तभी उनको कोई मार सकता है, न वहां बुढ़ापा है, न वहां बीमारी, न आदि है, न व्याधि है, व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, भोगी भोग है उधर। इसका भावार्थ में इसका जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज कौन है? दैत्य है ना, दिति के बेटे हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद, तो इसका मतलब वो इसी लोक के है ना, दैत्य लोक में है ना, तो नीचे लोक में रहे होंगे ना। जब प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा कि आपको क्या सुख चाहिए, स्वर्ग आदि का सुख जो चाहिए मांग लो, बोला स्वर्ग की बात करते हो, वहां तो मेरे पिताजी ने जाके इंद्र को भगा दिया था, वो तो मेरे पिताजी जी को उपलब्ध था पहले ही, उसके सुख को मैं क्या करूंगा, और उससे के सुख से ज्यादा तो सुख हमारे अपने लोक में है, जहां कभी बुढ़ापा नहीं आता है, कोई हमको परेशान नहीं करता है, ये सारे सुख हमारे को नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज ने ये कहा है वह कि ये सुख हम क्या करेंगे, तब इसलिए प्रभुपाद ने इसका भावार्थ लिखा है। मेरे ख्याल में इसको कल कोई पढ़े तो अच्छा है, कोई 10-12 लाइन, और जो पढ़े वो सातवें स्कंद से प्रहलाद महाराज का जो श्लोक प्रभुपाद ने यहां लिखा है, माया सुखाय भरम उपवहतो विमूढ़ान, ये श्लोक वहां से पढ़ के फिर उसके भावार्थ को इसके साथ मिला के इसके ऊपर चर्चा करे तो अच्छा है। तो ये विशेष रूप से इतने सारे सुख हैं लेकिन उन सबको क्या कहते हैं, इतने सुख हैं लेकिन उनको कहते क्या है, दानव, दैत, नाग, नाम एक का भी अच्छा नहीं है। मैंने कभी उसको बोला था ना क्या है? एक एक कृष्ण लीला में एक आता है असुर, उसका नाम क्या है, अघासुर, अघासुर है ना, वो उसके नाम की ट्रांसलेट करो, कोई उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो क्या बोलेगा, सिनफुल डीमन। अघासुर का मतलब अघ माने सिन, असुर माने डीमन, भाई तुम्हारा नाम क्या है, सिनफुल डीमन सर। मैं बहुत बड़ा पापी असुर हूं महाराज। जिनके नाम लेने से भी भय लगता है। तो वहां सुख ज्यादा है लेकिन वहां का हाल ये है। दो वैष्णव आचार्यों की तेरो भाव तिथि का है, दो मिनट पढ़ लेते हैं। एक है महेश पंडित, भगवान श्री कृष्ण की लीला में 12 विशेष गोपाल थे, जैसे राधा रानी के साथ अष्ट सखियां हैं ललिता विशाखा आदि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो 12 गोपाल है उनमें से सातवां गोपाल वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में महेश पंडित बन के आए। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होके नृत्य करते थे। कितना जब वो नृत्य करके गाते थे तो उनका कंठ से जो आवाज निकलता था ऐसे लगता था कोई बहुत बड़ा म्यूजिक बज रहा है, बैंड बज रही है, मतलब इतना गले से अद्भुत आवाज, अलौकिक आवाज निकालना। और नित्यानंद प्रभु को ये बहुत प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण के सखा बलराम जी को जैसे साथ रहते हैं हमेशा खेलने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु को ये बहुत प्रिय थे और उनके संग में ही प्रचार के लिए जाते थे। और उनके ठाकुर जी जिनकी उन्होंने पूजा की, निताय गौरंगा, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, गोपीनाथ, ये ठाकुरों की उन्होंने स्थापना की। ब्रजलीला में वो भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ एक गोप के वेश में, उनका नाम वहां महाबाहु है, जो 12 सखाओं में कृष्ण बलराम के 12 सखाए उनमें महाबाहु जो है वही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की लीला में महेश पंडित होकर आए हैं। और उनकी समाधि वृंदावन में जहां 64 महंतों की समाधि है वहां है। और दूसरा है जी उदाहरण दत्त, ये भी 12 गोपालों में एक है। तो आज असल में भगवान श्री कृष्ण के गोप सखाओं का ध्यान करना चाहिए कि ये थे 12 सखाओं में एक है। सप्तग्राम में रहते थे, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, बांसबेड़िया, सहानगर, सप्तग्राम। ये सप्तग्राम एक जगह है, उसका नाम है, उसे जहां 7 गांव थे उसमें, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें जितने गांव है ऐसे सप्तग्राम में रहता था। सुनार, सोने के व्यापारियों के घर में इसका जन्म हुआ था और पला बड़ा बड़े सुख से, आनंद और बड़े वैभव के साथ पला था। और फिर विवाह किया था एक बहुत बड़े मंत्री जो उनका था, उनके पुत्री से। और जहां उनका पद था उसको उदाहरणपुर कहते हैं, जहां उनकी ऑफिस थी, जहां रहते थे, उसका उदाहरणपुर के नाम से अभी भी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद उनके घर में जाके रहा करते थे, उनके घर में भोजन करते थे और ये अपने हाथ से नित्यानंद प्रभु को भोजन कराते थे। प्रेम नाम संकीर्तन सप्तग्राम में करते थे। और वहां जितने भी बैंकर्स थे, बैंकर का मतलब वैश्य, जितने भी वैश्य उस वहां जगह थे, जितने भी सुनार थे, उन सब का नित्यानंद प्रभु ने वहां उद्धार किया। एक उनके कुल में पैदा हुआ तब पूरे गांव का उद्धार किया। एक गांव में एक भक्त होता है तो पूरे गांव का उद्धार होता है। अभी हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, किसी गांव में कभी कोई संत पैदा हुआ है तो वहां के लोग ज्यादा धार्मिक रहते हैं। जिस गांव में कभी कोई संत पैदा नहीं हुआ है वहां के लोग कोई मर्यादा नहीं जानते। एक भी संत कभी किसी गांव में रहा होगा तो उस गांव के लोगों के उठने बैठने में आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। एक घर में एक भक्त होगा तो घर का पूरा वातावरण बदल जाएगा। तो ये एक भक्त होने के कारण नित्यानंद प्रभु ने पूरे उस पूरे कुल का सारा सुनार समाज का और सारा वैश्य समाज का उद्धार कर दिया। तो एक भक्त बनना भी इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। उदाहरण दत्त कि सप्तग्राम इतना कहने लगे कि सप्तग्राम इतना तीर्थ स्थान है कि यहां इस सप्तग्राम को केवल देखने से आदमी सब पापों से मुक्त हो जाता है। वो जब 26 साल के थे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ के नित्यानंद प्रभु के संग प्रचार में और कृष्ण नाम में लग गए। पर 26 साल में पत्नी का विवाह हो गया, उसके बाद दोबारा शादी नहीं की और फिर नित्यानंद प्रभु के साथ प्रचार करने के लिए सेवा में लग गए। पत्नी मरने का उनको दुख बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे लगता है कि जाके प्रचार करने लग गए। ठीक है, बेचारी अपने घर चली गई, अब भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण। आगे क्या लिखा है? उन्होंने षडभुज गौरंगा महाप्रभु की श्री विग्रह को स्थापित किया और उसकी पूजा शुरू की। षडभुज महाप्रभु का, षडभुज का मतलब 6 भुजाएं, दो भुजाओं में भगवान श्री कृष्ण का चिन्ह है, बांसुरी आदि, दो भुजाओं में श्री रामचंद्र के चिन्ह है और दो भुजाओं में सन्यासी महाप्रभु के चिन्ह है। तो 6 भुजाओं का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किसको कराया था? रामानंद राय को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, एक को, दोनों को? सार्वभौम भट्टाचार्य को, रामानंद राय को राधा कृष्ण का दर्शन कराया। तो षडभुज गौरंगा का और नित्यानंद प्रभु की पूजा करते थे, गदाधर पंडित का इनकी स्थापना की थी और भगवान श्री कृष्ण की लीला में और बलराम जी के संग, ये बलराम जी की सेवा में सुबाहु सखा ब्रज लीला में थे। सुबाहु सखा, वो बाहु था महेश पंडित, ये सुबाहु, और इनकी समाधि भी वृंदावन में 64 महंतों की समाधियों में है। आगे लिखा है उदाहरण दत्त के महिमा में After glowing Udhanandat Thakur as an exalted devotee of Nityananda who worshipped him in all ways, Krishna Das Kaviraj praises all of Sri Nityananda Prabhu's devotees. No one can count the unlimited followers of Nityananda Prabhu. I have mentioned some of them simply for my own purification. The branches of Nar Nityananda's tree, these eternal associates are full of ripened fruits of Krishna Prem. They gave this fruit to everyone, flooding them with pure love of God. These devotees have unlimited strength to give eternal, unalloyed love of Krishna. They can offer anyone Krishna Prem. तो उदाहरण दत्त और महेश पंडित ऐसे दो नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं जो किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। इसलिए आज सब हम इन दोनों को प्रार्थना करें कि इस जन्म में हम अधम दासों के ऊपर कृपा करके कृष्ण प्रेम का प्रसाद प्रदान करें। उदाहरण दत्त प्रभु की, महेश पंडित प्रभु की, दोनों द्वादश गोपालों की, एक कृष्ण बलराम के प्रेम की प्राप्ति कराएं, ऐसी प्रार्थना इनके चरणों में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो 8वां श्लोक 52 मिनट ही हुए हैं भाई, 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। तो 8वां श्लोक कल के लिए हो गया, 8th श्लोक बच जाएगा 4 के बाद। उसमें वो प्रहलाद महाराज की प्रचार की